श्रीमद् भागवतम 2:10:37
मुझसे यह जान लो कि सभी जीव अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म पाते हैं।
इसमें ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र, वैवस्वत मनु जैसे सामयिक प्रधान, इंद्रचंद्र तथा वरुण जैसे देवता, भृगु व्यास वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा सिद्धलोक के वासी, चारण गंधर्व विद्याधर असुर यक्ष किन्नर तथा देवदूत, नाग बंदर जैसे किम पुरुष, मनुष्य मृत्युलोक के वासी, असुर पिशाच भूत प्रेत उन्मादी शुभ अशुभ नक्षत्र विनायक जंगली पशु पक्षी घरेलू पशु सरीसृप पर्वत जड़ तथा चेतन जीव जरायुज अंडज स्वेदज तथा उद्भिज जीव तथा अन्य समस्त जल स्थल या आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव सम्मिलित हैं। ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। तात्पर्य, इस सूची में जीवात्माओं की योनियां बताई गई हैं। सर्वोच्च लोक से लेकर ब्रह्मांड के निम्नतम लोक की सारी जीवित योनियां सर्वशक्तिमान पिता विष्णु द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतः कोई भी श्री भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में 14:4 में निम्नलिखित श्लोक में सभी जीवात्माओं को अपनी संतानें कहा है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्या तास्या ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदपिता। प्रकृति की तुलना माता से की गई है। यद्यपि प्रत्येक जीव अपनी माँ से उत्पन्न होता देखा जाता है, किंतु सत्य तो यह है कि माता वास्तविक जन्म देने वाली नहीं है। जन्म का वास्तविक कारण पिता होता है। पिता के वीर्य के बिना शिशु को माता जन्म नहीं दे सकती। अतः असंख्य ब्रह्मांडों में विभिन्न योनियों तथा स्थितियों में सभी जीव शक्तिमान पिता परमेश्वर के बीज से उत्पन्न होते हैं। केवल अल्पज्ञानी ही इन्हें प्रकृति से जन्मा मानते हैं। परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध चिटी तक सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करते हैं। भौतिक प्रकृति भगवान की शक्तियों में से एक है। भगवद गीता 7:4 भौतिक प्रकृति जीवात्मा की तुलना में हे होती है, क्योंकि जीवात्मा परा प्रकृति है। भगवान की परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति संयोग करके सारे सांसारिक व्यापारों को प्रकट करती हैं। कुछ जीवात्माएं अपेक्षतया सुखी हैं तो कुछ दुखमय जीवन बिताती हैं, किंतु वास्तव में इनमें से कोई भी भौतिक बद्ध जीवन में सुखी नहीं है। बंदी जीवन में कोई सुखी नहीं रहता, चाहे वह प्रथम श्रेणी का कैदी हो या तृतीय श्रेणी का। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह तृतीय श्रेणी के बंदी जीवन से प्रथम श्रेणी के बंद जीवन में उत्पन्न किए जाने की अपेक्षा बंदी गृह से मुक्त होने का प्रयत्न करे। किसी की प्रथम श्रेणी की कैदी में प्रोन्नति हो सकती है, किंतु अगली अवधि में उसे तृतीय श्रेणी में फिर जाना पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह बंदी जीवन से मुक्त होने और भगवान के धाम जाने का प्रयास करे। समस्त प्रकार के जीवों के लिए यही असली गंतव्य है। वर्तमान श्लोक में 84,00,000 योनियों के कुछ मुख्य विभाग बताए गए। तो मनुष्यों की भी 4,00,000 योनियां हैं। तो वो 4,00,000 किस प्रकार से हैं? ब्रह्मा सबसे जो उत्तम श्रेणी के जीव हैं, तो सबसे जो 14 ग्रह हैं, सभी ग्रहों में अलग अलग प्रकार के जीव हैं। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हैं और अन्य सिद्ध पुरुष हैं, फिर सिद्ध लोक हैं, मनु हैं, फिर अनेक देवतागण हैं, स्वर्गलोक के वासी इंद्र चंद्र वरुण, फिर महर्षियों के लोक हैं जनलोक, तपलोक तपस्वियों के लोक हैं, फिर चारण गंधर्व हैं, विद्याधर हैं, असुर हैं, यक्ष हैं, ये भी सब पृथ्वी से ऊपर के लोक में आते हैं, यक्ष राक्षस इत्यादि इनका लोक। फिर किन्नर, देवदूत, नाग, फिर किम पुरुष, हनुमान जी जिस लोक में रहते हैं वो किम पुरुष लोक। किम पुरुष मतलब ये कैसा पुरुष, किम पुरुष तो पुरुष जैसे हैं लेकिन बंदर के भी समान है, जो मुंह है वो बंदर के समान है, तो इसे किम पुरुष। और फिर मनुष्य, मृत्यु लोक के वासी, सेवंथ प्लेटफॉर्म। और उसके फिर और नीचे असुर, असुर के कुछ प्रकार नीचे हैं कुछ ऊपर हैं, पिशाच, भूत प्रेत, उन्मादी, शुभ अशुभ नक्षत्र, विनायक, जंगली पशु, पक्षी, घरेलू पशु, फिर सरीसृप, फिर पर्वत, तो पर्वत भी जीव हैं, पर्वत भी बड़े होते हैं, तो इसलिए पर्वत जो है उनके अंदर भी जीव होता है, उनका शरीर होता है और वो अंदर जीव होते हैं। तो प्रभुपाद जी से एक बार पूछा तो क्या छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो सब भी जीव हैं, तो जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो सभी जीव जरूर नहीं है, सब में जीवन हो, लेकिन जो माउंटेन्स हैं बड़ी वो एक जीव हैं। अभी उसमें से कोई भाग अलग हट जाए मिट्टी तो वो उनका शरीर का भाग अलग हुआ है, लेकिन एज ए होल पर्वत के अंदर जैसे हिमालय, विंध्या, ये सब पर्सनैलिटीज हैं हिमालय की पुत्री। तो पर्वत, फिर जड़ तथा चेतन जीव, जरायुज, जरायुज पता नहीं क्या है आपको पता है जरायुज, फिर अंडज, अंडज मतलब अंड से उत्पन्न होने वाले जीव, अंडज, स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले, फिर उद्बीज, बीज से होने वाले, जरायुज आई थिंक एम्ब्रियो है, भ्रूण से, हाँ करेक्ट करेक्ट, भ्रूण से एम्ब्रियो से उत्पन्न होने वाले, तो चार प्रकार के जीव, चार प्रकार से जो उत्पत्ति होती है, तथा अन्य समस्त जल स्थल या आकाश के सुखी दुखी तथा मिश्रित जीव, तो इस प्रकार से सब सूचियां दी गई। तो लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग, कुछ नहीं बल्कि काफी, कि प्रकृति से सब उत्पन्न होता है, सब प्रकृति करती है। सामान्य रूप से हम जब देखते हैं ऐसे अद्भुत चीजें कैसे उत्पन्न हो रही हैं, तो सब प्रकृति कर रही है, इसमें क्या प्रकृति हो, लेकिन प्रकृति मतलब क्या, प्रकृति मतलब जड़ पदार्थ, वो उसे प्रकृति कहते हैं, जड़ पदार्थ किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उसके नियम, वो सब मिला करके जड़ प्रकृति। तो जब हम कह रहे हैं कि जड़ प्रकृति से सब आ रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे जड़ पदार्थों से जीवन आ रहा है। तो मात्र एक शब्द कह देना आसान है, सब कुछ जड़ प्रकृति से आ रहा है, लेकिन जड़ प्रकृति से कैसे, जड़ से कैसे जीवन उत्पन्न हो रहा है, उसका क्या विश्लेषण है, उसका क्या है, कैसे, कहाँ है अनुभव हमारा कि जड़ पदार्थ से जीवन उत्पन्न हो रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जड़ प्रकृति से जीवन आ रहा है। जैसे वृश्चिक तंडुल न्याय, तो धान जो होता है उसमें से कभी कभी वृश्चिक, स्कॉर्पियन, बिच्छू, तो एक ढेर पुराना हो गया है बहुत समय से चावल रखे हुए हैं, उसमें से कभी कभी दिखता है अरे इसके अंदर से स्कॉर्पियन निकला, बिच्छू निकला, तो वो क्यों बिच्छू उसमें से निकला, चावल उसका उत्पन्न स्थान नहीं है, चावल से उत्पन्न नहीं हुआ बिच्छू, लेकिन बिच्छू उसका जो अंड था, अंडे थे वो उस चावल के ढेर में थे जिससे वो उत्पन्न हुआ। तो जो ये भौतिक प्रकृति है, जड़ पदार्थ हैं, तो इसमें जीव उत्पन्न होते हैं लेकिन जड़ पदार्थों से जीवन नहीं बनता है। रूपा जी यहां पर समझा रहे हैं और भगवद गीता में भगवान खुद कहते हैं कि किस प्रकार से इस भौतिक प्रकृति में जीव आते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद योनिर। तो योनि यानी उनका जो उत्पत्ति होती है उसे योनि कहते हैं। तासाम ब्रह्म महत योनि, ये जो भौतिक प्रकृति है ये वो योनि है जिसमें से सब जीव उत्पन्न होते हैं। लेकिन अहम बीज प्रदपिता, बीज देने वाला जो पिता है वो मैं हूं। जिस प्रकार से मां के गर्भ के अंदर जो पिता है वो बीज आरोपित करते हैं और कणाश्रय, भागवतम में जैसे वर्णन है कणाश रेत कण आश्रय, जो वीर्य है रेत उस पे आश्रित होकर के जीव मां के गर्भ में प्रविष्ट होता है। हाँ, और फिर मां के शरीर में उसका शरीर बनता है। लेकिन जो जीव है वो पिता से मां के गर्भ में वो बीज आरोपित होता है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं ये जो भौतिक प्रकृति है इसके अंदर मैं जीवों को गर्भस्थ करता हूं। तस्यम गर्भम ददाम्य हम, एक और श्लोक भगवान बताते हैं कि मैं गर्भम ददामी, मैं गर्भ को देता हूं, मैं इस भौतिक प्रकृति के अंदर गर्भित करता हूं जीवों को। तो शास्त्र के अनुसार हम देखें और कॉमन सेंस से देखें तो हम क्या सब पाते हैं कि भौतिक प्रकृति अपने आप में जीव उत्पन्न नहीं कर सकती, भौतिक प्रकृति उसके शरीर उत्पन्न करती है। पुरुषा प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत असत जन्म योनिषु। तो जो जीव है वो प्रकृति में स्थित होकर के गुणों के अनुसार अलग अलग गुणों के निर्मित शरीर को पाते हैं। तो वो शरीर जो है वो प्रकृति देती है पर वो भी खुद नहीं देती है। मयध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेया जगत विपरिवर्तते। तो प्रकृति शरीर देती है लेकिन किसके अध्यक्षता में देती है, भगवान कह रहे हैं मेरी अध्यक्षता में देती है, क्योंकि प्रकृति जड़ पदार्थ कभी स्वयं कार्य नहीं कर सकते। तो मां के शरीर से बच्चे को शरीर मिलता है क्योंकि मां एक जीवित व्यक्ति है, तभी मां के गर्भ में वो जो व्यक्ति जाता है तो उसमें शरीर बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक प्रकृति है ये जीव अलग अलग जीवों को अलग अलग आत्माओं को जो शरीर प्राप्त प्रदान करती है वो एक परम जीव परमात्मा भगवान की अध्यक्षता में करती है, स्वयं नहीं करती। तो दूर से देखने में सामान्यतः ऐसा लग सकता है जैसे कि जीव अपने आप जड़ पदार्थ से निकल रहा है। साइंटिस्ट लोग ऐसा ही सोचते हैं कि भाई क्या है, अंड है और वीर्य है, दोनों भौतिक तत्व है, दोनों मिलते हैं और कुछ समय पश्चात जीव जीवन के लक्षण उसमें प्रस्तुत हो जाते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं नहीं, दोनों मिलते हैं वो सही बात है लेकिन इसके अलावा एक और चीज एंटर करती है आत्मा, तब ये जो है शरीर जो है वो चलायमान होता है, तब जीवन के लक्षण प्रस्तुत। तो भी बाह्य रूप से देखने में दोनों संभावनाएं दिख सकती हैं क्योंकि आत्मा को तो हम जड़ नेत्रों से देख नहीं सकते। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं रखता है केवल स्थूल इंद्रियों से ज्ञान लेता है उसे तो ऐसा लगेगा देखने पर कि ये एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिला और पदार्थ उत्पन्न हुए और वो पदार्थ जीवित, उनके अंदर जीवन के लक्षण प्रस्तुत हो गए। तो ऐसा सोचना स्वाभाविक है लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानवान है वो देखता है कि नहीं ये अपने आप से जड़ पदार्थ तो कभी मिलकर के जीवन प्रस्तुत करते ही नहीं, तो कैसे इस समय ये जड़ पदार्थ मिल गए। हमारे अनुभव में नहीं है कि जड़ पदार्थ स्वयं जीवन प्रस्तुत करें, मां बाप दोनों जीवित हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि माँ और बाप जो हैं वो माता और पिता उनके कुछ जड़ पदार्थ मिलकर के जीवन के लक्षण प्रस्तुत किए, इसका कहने का तात्पर्य ये है अंततः जब जीवन उत्पन्न हुआ तब रसायनों से हुआ, तब जड़ पदार्थों से हुआ। लेकिन हमारा वर्तमान अनुभव कहीं नहीं है कि जड़ पदार्थ स्वयं जीवन प्रस्तुत कर रहे हैं, माता और पिता जीवित व्यक्ति हैं, तभी तो उनसे एक जीवित व्यक्ति आता है। तो हमारा अनुभव नहीं है इस भौतिक जगत में कहीं भी कि जड़ पदार्थ स्वयं मिलकर के जीवन उत्पन्न करें। तो कैसे इस धारणा को माना जा सकता है कि जो माँ पिता, माता और पिता जो जिनके पदार्थ अंड और वीर्य मिल रहे हैं वो मात्र पदार्थ मिल रहे हैं और वो पदार्थ मिलकर के ही जीवन हो रहा है। लॉजिक समझ आ रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? जब हम ये कहते हैं कि भाई ये तो केवल दोनों के रसायन मिलकर के हुआ है, इसका मतलब ये है कि प्रारंभ में जब जीवन उत्पन्न हुआ तब रसायनों से ही हुआ होगा, तभी तो अभी ऐसा हो रहा है। लेकिन माता और पिता वो तो एक जीवित व्यक्ति हैं, जीवित व्यक्ति के माध्यम से आ रहा है। जड़ पदार्थ केवल अपने आप से जड़ पदार्थों के मिश्रण से जीवन उत्पन्न नहीं होता दिख रहा है कहीं। इसलिए जो दूसरी परिकल्पना है, दूसरी जो लॉजिक है, दूसरा जो प्रपोजल है कि नहीं भाई प्रारंभ में भी एक जीवित व्यक्ति रहा होगा तब जाकर के जीवन प्रारंभ हुआ होगा, वो अधिक तर्कसंगत है, अधिक विचारणीय। भले ही बाह्य दृष्टि से लग सकता है दोनों, क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटी है। आप दोनों पॉसिबिलिटी को, आप ये पॉसिबिलिटी को नकार नहीं सकते कि जीवन बाहर से प्रविष्ट हुआ, इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि जीवन तो आपको दिखता नहीं, आत्मा तो दिखती नहीं। तो इसे आप कैसे नकार सकते हैं कि आपको नहीं दिख रहा इसलिए नहीं है? ऐसा तो नहीं कह सकते। आपको तो नहीं दिख सकता है, जीवन नहीं दिखता है आपको। लेकिन हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कैसे जड़ पदार्थ मिलकर के एक जीवन के लक्षण प्रस्तुत करते हैं, और ना ही हमारे अनुभव में। तो इसीलिए ये बात तर्कसंगत नहीं है, भले ही आपको दिख सकती है। जैसे बच्चा जो हमेशा केवल घोड़ा गाड़ी देखा है कि एक घोड़ा या बैल गाड़ी खींचता है, तो जब देखेगा भाई कार चल रही है दूर से, तो उसे बड़ा आश्चर्य होगा, बिना घोड़ा गाड़ी के बिना जानवर के खींचे कोई चीज कैसे चल सकती है। तो जैसे बच्चे को जानकारी नहीं है कि यहाँ घोड़े की जगह एक मशीनरी है और घोड़े की जगह एक जीवित व्यक्ति अंदर ड्राइवर बैठा है जिसकी वजह से गाड़ी चल रही है, उसे लगेगा अभी ये जो गाड़ी है अपने आप चल रही है, उसको आश्चर्य लगेगा। लेकिन जो जानकार व्यक्ति उसे आश्चर्य नहीं लगेगा, उसे पता है कि यहाँ घोड़े की जगह एक ड्राइवर बैठा है, वही जीवित व्यक्ति है एक घोड़े की, उसे आश्चर्य नहीं होगा। या कोई रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गाड़ी है मान लीजिए, और ड्राइवर भी नहीं है अंदर, स्पेसशिप रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, तो एक सामान्य व्यक्ति को लगेगा अरे क्या अद्भुत चीज है, अपने आप स्पेसशिप ऊपर जा रहा है। लेकिन जो जानकार व्यक्ति वो जानेगा कि वो नीचे कंट्रोल रूम है, वहां पर ऐसा जीवित व्यक्तियों ने, साइंटिस्ट ने व्यवस्था की है, इसको डिजाइन किया है, बनाया है, तब जाकर के स्पेसशिप चल रहा है और इसको मॉनिटर किया जा रहा है। यानी सार में कहें तो बुद्धिमानता ये है कि जड़ पदार्थ के निर्देशन के लिए जीवित व्यक्ति आवश्यक है और है। जड़ पदार्थ अपने आप से कोई भी कार्य नहीं कर सकते, उनके पीछे निर्देशन होना चाहिए, चाहे रिमोट हो चाहे समीप हो। जितना व्यक्ति बुद्धिमान है वो उतना ही दूर से ही जड़ पदार्थों को कंट्रोल कर सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान इस प्रकार से इस भौतिक जगत की रचना करते हैं कि वो डायरेक्टली दिखते नहीं है करते हुए, दूर से करते हैं। स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, स्वभाव की ऑटोमेटिकली लगती है प्रकृति, लेकिन वो दूर से बैठ के इसको निर्देश कर रहा है। मैं दक्षिणा प्रकृति, मेरी दक्षिणा में हो रही। लेकिन भगवान इतने अधिक बुद्धिमान हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक जब अधिक बुद्धिमान होता है तो एक तो होता है ठीक है भाई गाड़ी बनाई, लेकिन ड्राइवर को वहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन उससे भी अधिक बुद्धिमानता है ड्राइवर बहुत दूर है और रिमोट से सब चला रहा है, और उससे भी अधिक बुद्धिमान है यही बैठे बैठे चंद्रमा पे स्पेसशिप जा रहा है। तो ऐसे ही जड़ पदार्थों को, जब जितना अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होगा उतना ही वो सूक्ष्मता से जड़ पदार्थों को चला सकता है। तो उसी प्रकार से भगवान इतने अधिक बुद्धिमान है, इतने महान है कि आदमी को दिखेगा ही नहीं कि कैसे भगवान किस तरह से कार्य कर रहे हैं, सब स्वाभाविक ही रहेगा, सब ऑटोमेटिक रहेगा, स्वाभाविक ज्ञान रहेगा। तो लेकिन अगर हम सोचें, विचारें तर्क से, सामान्य बुद्धि से, तो हम निष्कर्ष पहुंच सकते हैं नहीं भाई जड़ पदार्थ कोई भी बिना व्यक्ति के निर्देशन से नहीं चलते हैं। इससे स्वाभाविक है कि प्रारंभ में ये सृष्टि का जब प्रारंभ होता है तब भी उससे पहले कोई जीवित व्यक्ति चाहिए इसके निर्देशन करने के लिए, ये निष्कर्ष में पहुंच। जैसे अभी यहां है स्वेद जल, अभी स्वेद से उत्पन्न हो रहा है, पसीने से उत्पन्न होते हैं, ऐसे कीटाणु हैं कि जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, तो उनके मां बाप कहां हैं? तो उसको देख करके तो साइंटिस्ट बोलेंगे देखो यही उदाहरण है कि पसीने से जीव उत्पन्न हुआ, मतलब मैटर से लाइफ आ गया। तो ऐसा लगता है तो वही बात है ना, लेकिन तो वो तो मनुष्य मां और बाप का जो वीर्य और जो अंडे है वो भी वही चीज हुई, वहां उसको मिलने से हो रहा है, यहाँ एक और प्रकार से हो रहा है। जैसे वो भी जड़ पदार्थ के मिलने से हो रहा है, वैसे यहां पर भी जड़ पदार्थों में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे ही पेड़, तो यहां पर एक है बीज, पेड़ पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं? बीज से होते हैं। तो बीज पृथ्वी में होता है और फिर उससे लगता है कि जीवन पृथ्वी से निकल रहा है। तो एक दोनों ही परिकल्पना की जा सकती है। जो व्यक्ति केवल भौतिक दृष्टि जिसकी है वो सोचेगा कि देखो पृथ्वी जड़ है, बीज जड़ है और जड़ में से जीवन हो गया, अन्न जड़ है, वीर्य जड़ है, दोनों के मिश्रण से जीवन आ गया, पसीना जड़ है, उसके उसमें अंदर से जीवन उत्पन्न हो गया। लेकिन जो व्यक्ति समझदार है वो समझेगा नहीं भाई, जरूर कहीं जीवन बाहर से एंटर हुआ है, क्योंकि जड़ पदार्थ कैसे अपने आप जीवन उत्पन्न कर सकते हैं, उनके अंदर शक्ति नहीं है। जड़ पदार्थ अपने आप में जीवन उत्पन्न नहीं कर सकते, निश्चित रूप से जीवन बाहर से आया होगा, भले ही मैं उसको नहीं देख सकता। तो इसलिए फिर वो शास्त्र के अनुसार समझेगा अच्छा ये भगवान परम जो जीव हैं वो इस प्रकार से आयोजन कर रहे हैं कि ये सब जीवों को अलग अलग शरीर में प्रविष्ट करा रहे हैं। जैसे एक ड्राइवर एक कार में प्रविष्ट होता है और फिर कार चलती है, ऐसे ही जीव शरीर में प्रविष्ट होता है और फिर कार चलती है। तो इसीलिए न तर्के न योजयेत अचिंत्य ये खलु ये भावा न तर्के न योजयेत। जो चीज अचिंत्य है, जो हमारी इंद्रियों से परे की वस्तुएं हैं, उन्हें तर्क से नहीं समझा सकता, मात्र तर्क से नहीं समझा सकता, उसके लिए हमें चाहिए हायर नॉलेज, हायर व्यक्ति की नॉलेज। तो वो यहां कह रहे हैं, यहां स्पष्ट भागवत में भगवान कह रहे हैं कि ये सब जो योनियां हैं ये मेरे द्वारा इस प्रकार से इनमें प्रकृति के द्वारा इनके शरीर बनते हैं और मैं उनमें जीव आत्मा को मैं देता हूं। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं, तो योनियां अलग अलग प्रकार की हैं, कुशल अकुशल, कुछ सुखी हैं और कुछ दुखी हैं, मनुष्यों में कुछ अधिक सुखी हैं कुछ अधिक दुखी हैं, कुछ जानवरों की योनियां हैं अधिक दुखवाने हैं कुछ सुखवाने, लेकिन अल्टीमेटली सभी के सभी केवल दुखी हैं। यही भालो यही मंद, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सब क्या है, केवल मन की परिकल्पना है इस भौतिक जगत में, क्योंकि वो रिलेटिव प्लेटफॉर्म पर है। जब हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है, जब बीमार हो जाते हैं ओहो जब ये मैं बीमार नहीं होता, जब बीमारी नहीं होती तो कितना सुखी कितना आनंद होता है, लेकिन जब बीमारी नहीं होती है तो ऐसा सुख प्रतीत नहीं होता है, लेकिन जब दुख होता है, जब बुखार होता है, जब भूख नहीं लगती है तब लगता है आह कितना अच्छा था जब भूख लग रही थी, लेकिन जब सामान्य लगता है तो फिर ये सामान्य बन जाता है। तो ऐसे रिलेटिव है इस भौतिक जगत में सुख दुख, लेकिन आत्मा के लिए तो दोनों ही दुख हैं। आत्मा की दृष्टि से तो भौतिक सुख की स्थिति, ब्रह्मा की स्थिति भी दुख की स्थिति। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर क्या प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मा योनि में जन्म मिले यही नहीं आस, ये मेरी आशा नहीं है, कीट जन्म हो तोरा दास क्या है नहीं मोरा आस यही अभिलाष है। सब यदि आपका भक्त का संग मिले तो भले ही कीट योनि मिले वो अच्छा है, लेकिन ब्रह्म योनि आपसे विमुख हो वो भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ब्रह्म योनि क्या सुखी योनि, वो तो परम सभी योनि परम दुख है, ब्रह्मा की योनि भी परम दुख है और चीटी की योनि परम दुखी। क्यों? क्योंकि सभी के अंदर भगवान के साथ सानिध्य नहीं है, भगवान की भक्ति सेवा से विमुख है, यानी बहुत ही जगत के। तो यदि ब्रह्मा होकर के हम भगवान से विमुख बन जाएं तो उस ब्रह्म योनि का क्या लाभ, लेकिन यदि कीट योनि में भगवान के भक्तों का संग मिले और भगवान के प्रति कुछ आकर्षण हो तो वो अच्छा है, कहने का तात्पर्य यह है कि सुख है आत्मा के लिए भगवान की सेवा, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब दुख है। तो इसलिए कोई योनि अच्छी बुरी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं हम बस ये चाहते हैं कि हमारे को मरने के टाइम में कोई दुख ना हो। अरे मरना ही तो सबसे बड़ा दुख है। मरने के टाइम में और दुख और सुख की कल्पना मानसिक कल्पना है कि उसको तो वो बहुत तकलीफ होकर के मरा और वो तो ऐसे मर गया। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि मरना स्वयं अपने आप में सबसे बड़ा कष्ट है। फिर उसमें कैसे मृत्यु हो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लगता है बड़ा महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। कई बार हम देखते हैं लोग कहते हैं बड़ा अच्छा उसका मृत्यु हुआ, बस ऐसे सो रहा सोते सोते चला गया, कितना सुखी उसका। पर क्या सुखी हुआ, सोते सोते मर गया और अभी चूहा बन गया, बिल्ली बन गया, तो क्या अच्छा हुआ। अब फिर उसके चूहा बिल्ली बनने के बाद फिर चूहा बन गया तो बिल्ली से परेशान है, और बिल्ली है तो फिर कुत्ते से परेशान है, और फिर खाने के लिए परेशान है, और फिर बीमारियां, फिर वही, और फिर बिल्ली सोते सोते मर गई, अभी कुछ और बन गई, तो फिर और एक नहीं, तो फिर कहाँ है सुख। अभी जो सोते सोते मर गया वो चूहा बन गया, वो चूहे को याद है कि मेरे को कितना सुख मिला था, मैं सोते सोते मर गया था, उसको याद रहेगा चूहे को कितना अच्छा था, मैं सोते सोते मर गया, मर गया तो खत्म हो गया, फिर नया। इसलिए ये सब सुख है और दुख है, ये सब मानसिक कल्पनाएं हैं। इसलिए समझना चाहिए जब दुख आए ये दुख मेरे लिए नहीं है, ये शरीर को मिल रहा है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, और जो भौतिक सुख है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन मेरा वास्तविक सुख है कि मैं भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाऊं, जब हमें भगवान की सेवा में आनंद आने लगे, यही वास्तविक सुख है, यही नित्यता है, यही नित्य चीज है जो मरने के बाद भी रहेगी, अभी भी रहेगी, मरने के बाद भी। इसलिए भक्तों का एकमात्र दृष्टिकोण क्या होता है कि भगवान कैसे मुझे आपकी सेवा में आनंद आने लगे, सेवा आनंद, भगवान की सेवा में आनंद आने, वो उसी की अपेक्षा करते हैं, उसी के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। दैट्स इट, वही साधना का सार है उनका कि कैसे धीरे धीरे भगवान हमें आपकी सेवा में आनंद आने लगे, कि भगवान का जो नाम है, भगवान के नाम लेने में कैसे हमें धीरे धीरे रसा साधन कर सके। क्या है शुद्ध नाम रति, कब भगवान के नाम में हमको रति आएगी, ये भक्त सोचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस भौतिक जगत में कोई भी स्थिति जो है, ब्रह्मा की योनि तक की स्थिति जो है वो शुद्ध है, वो सब व्यर्थ है, वो जीव को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए उनकी एकमात्र अभिलाषा होती है कि वो भगवान की सेवा प्राप्त करें। फिर एक और चीज यहां बताई गई है कि जो कुशल अशुल योनियां हैं, सत असत योनियां, सत असत योनिशु, ये कैसे बनती हैं, कर्मणाम गतयस्त्विमाम, ये हमें अपने कर्मों के माध्यम से मिलती हैं, अकस्मात नहीं मिलती, हमारे कर्म के परिणाम स्वरूप ये मिलती। सत असत जन्म योनिषु पुरुषा प्रकृति स्थो ही भुंकते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संग अस्य सत असत जन्म योनिषु। जिस प्रकार के गुणों का हम संग करते हैं इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, उसी के अनुरूप हमको योनियां मिलती। तो कई बार लोग बड़े परेशान होते हैं, ये पिछले जन्मों का कर्म हमें अभी क्यों भुगतना पड़ता है, ये भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है, ये भाग्य के अनुसार क्यों मिलता है। तो क्या है भाग्य, भाग्य मतलब जैसे अगर पहले इसको प्रारंभ करें, भाई कोई भी आदमी को जो परिणाम मिलना चाहिए उसके उसके करने के अनुसार मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी जो परिणाम मिलता है वो तुरंत मिले ऐसा तो संभव नहीं है। आप खेती करते हैं तो बीज बोते ही तुरंत फल मिल जाता है क्या, वो चैतन्य महाप्रभु कर सकते हैं, बीज बोए और तुरंत आम बन गया। लेकिन सामान्य रूप से जब बीज बोते हैं तो फल बनने में टाइम लगता है, और जैसी जैसी फसल है उसके अनुसार फल का टाइम अलग अलग होता है। आप धान बोएंगे तो 3 महीने में फल मिलेगा, लेकिन आप आम का बीज बोएंगे तो कितने कई साल में फल मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग उसके फल होते हैं, और फिर बीज फल के बाद क्या होता है, फिर बीज भी होता है। अभी वो बीज दोबारा से जब जमीन में गिरेगा तो फिर वैसा ही एक फल मिले, पेड़ उत्पन्न होगा, फिर से आम का पेड़ लगेगा और फिर उसमें फल लगेंगे। तो उसी प्रकार से हम सब जो यहां आते हैं खेती करने आते हैं, क्षेत्र, हमको एक क्षेत्र मिलता है, हमको एक शरीर मिलता है, एक प्रकार की भौतिक स्थिति मिलती है, और हम यहां सब यहां पर आते हैं। हाँ, जैसे एक किसान खेती क्यों करता है, फल की अपेक्षा से खेती करता है, अभी है फसल पकेगी उसका मैं भोग करूंगा। ऐसे हम सब यहां इस भौतिक जगत में भोग फल प्राप्त करने के लिए, भौतिक फल प्राप्त करने के लिए आते हैं, और फिर उसके लिए भगवान के निर्देश के अनुसार, प्रकृति के निर्देश के अनुसार, परमात्मा के निर्देश के अनुसार खेती शुरू करते हैं। ये क्या है, कर्म करना, जो कर्म करते हैं वो खेती है। तो जब हम कर्म करते हैं, जब खेती प्रारंभ करते हैं, तो उसके अलग अलग समय पर फल बनते हैं, अलग अलग प्रकार के फल बनते हैं। तो कुछ बीज के रूप में होते हैं, कुछ कूट, और कुछ जो पक गए हैं फल, तो इस प्रकार से अलग अलग होते हैं। तो इसलिए क्योंकि जीव केवल मात्र इसी शरीर के प्रारंभ होने से ही उत्पन्न नहीं हुआ और इस शरीर के अंत पर नहीं मर जाएगा, वो तो इस शरीर के मिलने से पहले पर भी था, इस शरीर में भी है और इस शरीर के होने खत्म होने पर भी रहेगा। इसीलिए स्वाभाविक है कि जो फल मिलेंगे वो इसी जीवन के इसी जीवन में नहीं मिलेंगे। जैसे एक व्यक्ति किसी का मर्डर करे पैंट शर्ट पहन कर और फिर आकर के धोती कुर्ता पहन ले, और फिर कई कुछ समय हो जाए, साल हो जाए, दो साल हो जाए, दूसरी जगह चला जाए, अभी फिर उसको पुलिस पकड़ते पकड़ते पीछे उसका पीछा करते करते आए और उसको पकड़े, तो आसपास के पड़ोसी कहेंगे, और उसका फोटो भी लेके आए कि देखो ये आदमी था, इसने पैंट शर्ट पहना था, इसकी मूछें थी, अभी वो मान लीजिए क्लीन शेव हो गया या कुछ भी, तो अभी सब बोले अरे भाई ये तो उसने पैंट शर्ट पहन करके खून किया था, ये जब उसकी मूछरी तब खून किया था, इसका परिणाम उसको अभी क्यों दे रहे हो। तो भले ही उसकी मूछें थी तब उसने खून किया या पैंट शर्ट पहन के खून किया, लेकिन जब उसने खून किया तो परिणाम उसको मिलेगा ही, उसके वस्त्र चेंज करने से, ड्रेस चेंज करने से उसका जो परिणाम है वो खत्म नहीं हो गया। तो उसी प्रकार से हमने पहले के जीवन में कोई अपराध किया या कोई भी कार्य किया, यानी हमारी दूसरी ड्रेस थी, कोई दूसरा शरीर था, तो उस ड्रेस में जो हमने कोई कार्य किया उसका परिणाम ये ड्रेस चेंज करने से क्यों अभी नहीं मिलेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो क्यों भाग्य से काम नहीं होना चाहिए। तो भाग्य का अर्थ है पूर्व कर्म के अनुसार कार्य, ये तो मिलना ही चाहिए ना, उसी के अनुसार तो होना चाहिए। तो ये यहां पर बताया गया है कि अपने अपने कर्म के अनुसार सबको मिल रहा है, इसमें क्या गलत है, जैसा कर्म करोगे वैसे ही भरोगे, लेकिन वो कर्म जरूरी नहीं आपके अभी, क्यों, बहुत पहले की भी हो सकते हैं और उसके फल अभी पक रहे हैं, वो प्रारब्ध कर्म है जो पक चुके हैं, और ऐसे भी है जो भी पकेंगे, आपने फल बो दिया है, बीज बो दिया है, बीज बो दिया है, पेड़ बन गया है, अभी अलग अलग समय पर फल पकते हैं, तो कुछ पक चुके हैं, कुछ पकने बाकी हैं, और फिर उनसे बीज बनेंगे, बीज बनने से फिर आप वैसे ही कार्य करोगे और फिर दोबारा से आप वैसे ही फल लोगे। तो इस प्रकार से अलग अलग शरीरों में परिवर्तन करते हुए जीव अलग प्रकार के फल भोगता रहता है, इसमें क्या ना समझने वाली बात है, बिल्कुल स्पष्ट है, लॉजिक और शास्त्र के अनुसार सम्मत है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि अलग अलग योनियां जो हैं वो अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव को मिलती हैं, लेकिन मेरी अध्यक्षता मिलती है। इसीलिए वास्तविक जो हेतु है जीव का वो है कि इन सभी योनियों में भ्रमण करने की प्रवृत्ति को छोड़ करके अंततः इन सबको फुल स्टॉप लगा करके वापस भगवत धाम जाए, जो उसका वास्तविक स्थान है, जहां जाने के बाद ये भौतिक सुख दुख से ऊपर नित्य सुख को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न? मस्ट बी विनायक गणेश, किस? ओ अच्छा, हाँ हाँ, विनायक जंगली पशु नक्षत्र, यहाँ पर कोई उल्लेख भी नहीं है इसका। रंत्राल श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की।